نہ آتے خرچ ہوئی. پہنچا حضرت میں حج کر کے آ گیا, لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو. یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی. اللہ تعالی مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں, تھوڑا مال ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں. انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا اس کے پاس لے گئے اور دکھایا بیٹے دیکھو, ہاں گیزر لگا ہوا تھا, تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا. 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کو مال میں برکت کہتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے. مجھے ایک آدمی ملا کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے, 35 سال سے وہ چل رہی ہے, مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی, اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے. اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے, اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6 7-7 بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا. کیوں؟ کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں. تو برکت ایک الگ چیز ہے. ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا. بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے. خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت, وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے, بڑا دیکھ دیکھ کے یہاں چربی نہیں یہاں چربی نہیں, بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. وہ بڑے میاں ان کی بھویں بھی سفید اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا, لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے. اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا, میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں, پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو عینک اتار کے پڑھتے تھے, اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی, دور کے لیے عینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ ہوتا ہی ہے, وہ تو ہر آپٹیشن کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. करीब की नजर 90 साल में इतनी तेज के खत जो है वो ऐनक उतार कर पढ़ा करते थे। सुनवाई इतनी तेज थी समात कि कमरे के कोने में कोई विस्पर करता था तो हजरत सुन लिया करते थे। और अल्लाह की शान के 90 साल की उम्र में तमाम दांत हजरत के बिल्कुल ठीक थे। एक मरतबा खाना आया तो मैं नरम सी रोटी ना ढूंढ के हजरत के आगे रखने लगा। पूछने लगे क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हजरत मैं कोई नरम सी रोटी आपके लिए ढूंढ रहा हूं, पर मैं मेरे दांतों को क्या हुआ है, दो मुझे कोई कड़क रोटी। 90 साल की उम्र में कड़क रोटी खाई, अल्लाह की शान। और ऐसी कुव्वत अल्लाह ने दी थी कि एक मरतबा इस आजिज के कंधे पे सर रख दूसरा हाथ रखा तो माशाल्लाह लंबा कद था और सेहत थी और जिस्म था, तो जैसे कंधे पे हाथ रखा तो मैं थोड़ा सा नीचे हुआ। फरमाया क्या चूजे बने फिरते हो? हम वाकई अपनी जवानी में उनके सामने चूजे थे, अल्लाह ने ऐसी सेहत दी थी। अच्छा आखिरी उम्र में शुगर की बीमारी हो गई थी। अब आपको पता है कि जो शुगर का मरीज होता है उसको तो हर 2-4 घंटे के बाद यूरिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं, मेरा अपना वाकया है जो खुद उनके साथ अपनी आंखों से देखा और आज मस्जिद में बावजू नैरेट कर रहा हूं। रमजान शरीफ में हजरत मरी में थे और वहां पर जो मकामी इमाम थे उन्होंने कारी हजरात बुलाए हुए थे। एक रात वहां किरत की बड़ी अजीब महफिल होती है, चुन चुन के कुर्रा को वो बुलाते हैं। हजरत ने मगरिब के बाद खाना खाया और वुजू फरमाया, और वुजू करने के बाद मुझे फरमाने लगे कि भाई जल्दी जाना है ताकि पहली सफ में जगह मिल सके, तो जल्दी ईशा के लिए जाना है। तो हजरत पहले ही आके बैठ गए, हालांकि अभी आधा घंटा नमाज में रहता था। ईशा पढ़ी, फिर ईशा के बाद तरावी हुई, फिर तरावी पढ़ने के बाद किरात शुरू हुई। तो मेरा ख्याल था शायद तरावी पढ़ने के बाद हजरत जाएंगे वुजू ताजा करेंगे, तो मैंने जरा एक दो दफा चेहरे की तरफ देखा कि जाने की नीयत नजर आती है, मगर नहीं, वो तो पुरसकून बैठे थे। मैं खामोश हो गया। अब किरात शुरू हुई, एक कारी ने कुरान पढ़ा, और हमारे हजरत तो कुरान के आशिक थे, वो तो जब कोई कुरान पढ़ता था हजरत ताजा दम हो जाते थे। हजरत ने उन कुर्रा का कुरान सुना, इतना पढ़ने वालों ने कुरान पढ़ा कि सहरी का वक्त खत्म होने में एक घंटा बाकी रह गया। तो ऐलान हुआ मस्जिद में कि भाई सब लोगों के लिए इज्तिमाई सहरी का बंदोबस्त मस्जिद में किया गया है, अब एक घंटा रह गया, आप लोग उठें और अपनी सहरी खा लें। तो मैंने हजरत की तरफ देखा कि भाई अब तो कमरे में जाएंगे वुजू करने के लिए, रात ही गुजर गई। तो मैंने पूछा हजरत वुजू फरमाएंगे? तो मैं इसका मतलब था कि नहीं करना, मैं चुप हो गया। हजरत ने वहीं पर मस्जिद में सहरी खाई। अब खाना खाने के बाद तो नौजवान लोगों को जाना पड़ता है बैतुल खला में, तो जब खाना खा लिया तो फिर मैं जरा करीब हुआ, हजरत वुजू ताजा फरमाएंगे? मेरी तरफ देख के फरमाया मेरा वुजू कोई कच्चा धागा है। ये अल्फाज कहे, मेरा वुजू कोई कच्चा धागा है। मैं खामोश हो गया। अब फजर का वक्त हो गया तो इस आजिज का ख्याल था कि बस हजरत फजर पढ़ेंगे और फौरन चले जाएंगे। हजरत ने फजर का सलाम फेरा और मिंबर के ऊपर आकर बैठ गए और फरमान लगे कुर्रा हजरात को कि सारी रात तुमने मुझे कुरान सुनाया है, अब मैं तुम्हें कुरान सुनाऊंगा। और हजरत का दरसे कुरान तो अजीब होता था, फजर के बाद उसको मिस नहीं होने देते थे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई जैसे रमजान शरीफ में मुख्तलिफ मस्जिदों में तालीम की जाती है 5 मिनट की 10 मिनट की 4 मिनट की, तो इस तरह हजरत थोड़ा सा दर्स दे देंगे। मगर हजरत तो सुबहान अल्लाह कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और जज्बे में ऐसे थे कि फरमाया तुम सब उलमा को राहो, मुझे तर्जमा करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक आयत पढ़ रहे हैं और उसके बाद अगले मजमून की दूसरी आयत पढ़ रहे हैं और फिर तीसरी आयत पढ़ रहे हैं, फिर चौथी आयत पढ़ रहे हैं, आयतें ही आयतें पढ़ते जा रहे थे। हजरात उलमा हैरान थे क्या इल्हामी मजमून बयान हो रहा है। लो जी हजरत ने इतना लंबा बयान किया कि इशराक का वक्त हो गया। फिर सब ने इशराक की नमाज पढ़ी और हजरत इशराक के बाद कमरे में आए और आपने वुजू ताजा किया। 90 साल की उम्र, शुगर का मरीज, दरमियान में खाना भी खाया और मगरिब के बाद के वुजू से हजरत ने इशराक की नमाज पढ़ी। इसको कहते हैं सेहत की बरकत। ये बरकत अजीब चीज है, जिस चीज में बरकत आ जाए अल्लाह उस चीज में बंदे को पुरसकून कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन जेन में ये पैदा होता है कि ये बरकत कैसे पैदा हो सकती है। तो चंद आमाल हैं कि जिनके जरिए से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। जरा तवज्जो से सुन लीजिए ताकि बात को मुकम्मल करें। उनमें सबसे पहले है तकवा भरी जिंदगी गुजारना, गुनाहों से बचना, नेकोकारी की जिंदगी गुजारना, मासीयत से खाली जिंदगी गुजारना, इसको तकवा कहते हैं। एहतियात वाली जिंदगी, हमारी जबान में कहते हैं ना टू बी ऑन द सेफ साइड, इंग्लिश में कहते हैं और जी टू बी ऑन द सेफ साइड। तो शरीयत के दायरे में टू बी ऑन द सेफ साइड रहकर जिंदगी गुजारना, इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज। अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, हम आसमान से बरकतों के दरवाजों को खोल देते। तो इससे बरकत आती है। तो सबसे पहला काम गुनाहों से बचना, नेकी की जिंदगी इख्तियार करना, इससे इंसान की जिंदगी में बरकतें आ जाती हैं। दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना। अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना, क्यों? अल्लाह की जात भी बरकत वाली और अल्लाह का नाम भी बरकत वाला। दलील कुरान अजीमुशान में से अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में है मुल्क। तो जात भी बरकत वाली हुई। और फिर फरमाया तबारकस्मु रब्बिक, बरकत वाला नाम है तेरे रब का। तो जात भी बरकत वाली और उसका नाम भी बरकत वाला। इसलिए हमें चाहिए कि एक तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करें ताकि जिंदगी में बरकत आए, और दूसरा ये कि हर अच्छे काम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से करें। बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि इस्म जो लफ्ज है ना, इसके कई माना हैं अरबों में। एक इसका माना है नाम, तो बिस्मिल्लाह का माना बनेगा अल्लाह के नाम के साथ। अब ये तर्जमा अक्सर हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन इस्म का एक और भी माना है अरबों में, वो है बरकत। तो अगर वो माना लें तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह की बरकत के साथ। और अब मुझे याद आता है कि हमारी नानी दादी जो बूढ़ी औरतें थी ना, वो उठते बैठते अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, यानी किसी ने उनको बिस्मिल्लाह का तर्जमा सिखाया था। तो उठते बैठते अल्लाह की बरकत के नाल साथ ये कहते अल्लाह की बरकत। तो बिस्मिल्लाह को कसरत से पढ़ना, गाड़ी का दरवाजा खोलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, चाबी लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई भी अच्छा काम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। जिस काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह उस काम में बरकतें दाखिल कर देंगे। एक हदीस पाक में है कि मेरा नाम बरकत वाला है और जिस काम में मेरे नाम को पढ़ा जाएगा मैं उस काम में बरकतों को शामिल फरमा दूंगा। तो बिस्मिल्लाह हम अपनी जिंदगियों में नहीं पढ़ते ज्यादा। आप गौर करें, हमारी कोताही है, हमारी कोताही है कि हम इसकी बरकत से फायदा नहीं। हमें न तवीजों वालों के पीछे भागना पड़ेगा, न अमलियात वालों के पीछे भागना पड़ेगा, न किसी और के पीछे जाना पड़ेगा। एक बिस्मिल्लाह की अपनी जिंदगी में कसरत शुरू कर दें, अल्लाह ताला हर चीज में बरकतें अता फरमा देंगे। आप इसको तजर्बा करके देखिए, सुभान अल्लाह, क्या बरकतों का समुंदर हमारे पास है और हम इधर उधर भागे फिर रहे होते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि इंसान दरिया के किनारे हो और प्यासा मर रहा हो। तो एक तकवा से बरकत आती है और दूसरी अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह को मुख्तलिफ औकात में कामों से पहले पढ़ने से इंसान के अमलों में, कामों में बरकत आ जाती है। और तीसरी चीज कि इंसान की दुआ, इससे भी जिंदगी में बरकत आ जाती है। दुआ से बरकत जी, खुद दुआ करें, माँ बाप से दुआ करवाएं, पीर उस्ताद से दुआ करवाएं, दुआएं लें, देखें बरकतें कैसे आती हैं। एक होता है दुआ करवाना और एक होता है दुआ लेना, इनमें फर्क है। आज हम सब लोग दुआएं करवाते फिरते हैं और दुआएं लेना ये होता है कि इंसान इतना अच्छा बने, नेक बने कि उसका चेहरा देख के माँ बाप के दिल से दुआ निकले, पीर उस्ताद के दिल से दुआ निकले, दोस्त के दिल से दुआ निकले, ये होता है दुआएं लेना। बीवी बच्चों के दिल से दुआ निकले, क्या हम ऐसे हैं कि हमें देख के किसी के दिल से दुआ निकले? हूक तो निकलती होगी जो हम सताते हैं बीवी को या सताते हैं बच्चों को या अपने साथियों को, तो हमें देख के लोगों के दिल से हूक तो निकलती होगी कि इसने हमारे साथ कितना बुरा किया। काश के हम दुआएं लेने वाले बनते। दुआ से बरकत, जरा सुनिए। अबू हुरैरा लानो नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बातें आपकी सुनता हूं भूल जाता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, ऐसी दुआ मिली कि फरमाते हैं उसके बाद मैं बात सुनता था, मुझे बात भूलती ही नहीं थी। अनस लानो ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की 10 साल, नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दुआ दे दी, ए अल्लाह इसके रिज्क में, उम्र में, औलाद में बरकत अता फरमा दे। फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे रिज्क में इतनी बरकत दी कि लोगों के फलों का बाग था तो साल में एक मरतबा फल देता था और मेरा फलों का बाग साल में 2 मरतबा फल देता था। और फरमाते हैं कि इतनी मेरी आमदनी थी कि मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की डलियों को तोड़ा करता था। जरा गौर कीजिए, लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की डली को तोड़ा, तो वो डली कितनी होती होगी? तोलों में तो नहीं ना होगी, तो किलोज में ही लगता है होगी कि जो लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से तोड़ते थे। इतना सोना अल्लाह ने दिया, माल इतना दिया, बरकत अल्लाह ने। फरमाते हैं कि औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि 100 से ज्यादा पोते पोतियां, नवासे नवासियां मैंने अपनी आंखों से देखे, 100 से ज्यादा। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह ने बरकत दे दी। ऐसी बरकत थी उनके रिस्क में कि एक सहाबी उनके घर आए, मैं ये बात सुना के जरा आगे बात पढ़ाता हूं। एक सहाबी उनके घर आए, खाना खाया तो अनसलान ने अपनी बांदी से कहा कि भाई तौलिया लाओ, हाथ उनके धुलाए हैं तो वो पूछ लें। वो तौलिया लाई तो तौलिया मैला था, तो अनसलान ने डांटा, देख नहीं रही तुम इतना मैला तौलिया लेके आई? वो कहने लगी बस थोड़ी देर, जैसे हम कहते हैं ना वेट ए मिनट, उसने भी कहा जी वेट ए मिनट मैं आती हूं। और वो सीधा गई और आग जल रही थी, उसने जाके तौलिया अंदर डाल दिया। अब मेहमान हैरान है कि तौलिया आग में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उसने तौलिया निकाल दिया, साफ शफाफ तौलिया, और वो लेके आई और कहे प्लीज प्लीज हाथ आप अपने जो है ना इससे साफ कर लें। वो कहते हैं गरम गरम तौलिए साफ सुथरा, मैंने उससे हाथ तो खुश कर लिए। मैंने अनस लानो की तरफ देखा तो पूछा ये क्या मामला है? तो अनस लानो मुस्कुराए, कहने लगे असल में मेरे पास एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, मैंने आपको खाना खिलाया था और उनको हाथ खुश करने के लिए तौलिया दिया था, जब से इस तौलिये को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ है आग इसको अब जलाने से बाज आ गई है। ये मैला हो जाता है, हम तनूर में डालते हैं, आग मैल कुचैल खा लेती है, साफ तौलिया हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई उन्होंने खिदमत की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। आप भी माँ बाप की खिदमत करके दुआएं लें, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें दुआएं लें, दोस्त احباب سے دعائیں لیں تو دعائیں لیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی آتی ہیں. تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. چنانچہ حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ تھے، ان کے تین بیٹے تھے. تو جب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی تم دونوں ساری زمین پیسہ لے لو، والدین کی خدمت مجھے دے دو. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ساری جائیداد ہم مل گئی اور یہ کرے خدمت. اس نے خدمت کی خدمت کی. اب اس کے والد اس کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس چیز میں برکت نہ ہو وہ نہ لینا، ہمیشہ وہ چیز لینا جو برکت والی ہو. بہت کہتے رہتے تھے کہتے رہتے تھے. تو اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ میں نے ہمیشہ برکت والی کوئی چیز لینی. ماں باپ فوت ہو گئے. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا، کہنے والے نے کہا بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں جگہ جاؤ تو پتھر کے نیچے 50 دینار پڑے ہوئے ہیں، لے لو. تو چونکہ مائنڈ سیٹ تھا برکت والا، تو اس نے پوچھا ان 50 میں برکت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھا، بیوی کو خواب سنایا، تو بیوی ماشاءاللہ پھر بیوی ہوتی ہے، کہنے لگی لے لو جا کے. اس نے کہا بھائی برکت نہیں، میں نہیں لوں گا. اس نے کہا نہ لینا، ذرا جا کے دیکھ تو لو نا، پڑے بھی ہیں یا نہیں. اس نے کہا دیکھنے بھی نہیں ہے. خیر بات چلی گئی. اب کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھا، کہنے والے نے کہا بھائی فلاں جگہ 10 دینار رہ گئے ہیں، وہ لے لو جا کے. اس نے کہا برکت ہوگی؟ اس نے کہا برکت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا، اس نے کہا دیکھا اپنے 40 کا نقصان کر دیا نا، پہلے لے لیتے تو 50 ملتے. میں تو اب بھی کہتی ہوں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جاؤ 10 ہی لے لو. اس نے کہا بھائی برکت والے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. 10 بھی گئے. پھر کافی دنوں کے بعد خواب آیا، کسی نے کہا بھائی 1 دینار رہ گیا ہے، جاؤ اور فلاں جگہ سے لے لو. اس نے کہا برکت والا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں برکت والا ہوگا. وہ صبح اٹھا، بیوی کو سنایا اور جا کے برکت والا دینار لے لیا. جب گھر لا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا بھائی بڑا عرصہ گزرا، کبھی کوئی اچھی ڈش نہیں بنی اور مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج اللہ نے یہ 1 دینار دے دیا ہے تو چلو کچھ لے جاؤں. تو وہ گیا، مچھلی بک رہی تھی بڑی ساری، اس نے لے لی. مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ دیکھو بھائی وہ دینار مل گیا تھا، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ مچھلی لے لی کہ تم آج پکاؤ، کھانا تو اچھا کھائیں نا آج. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ جب مچھلی کو تیار کرنے لگی تو جب کاٹا تو اس کے پیٹ میں ایک ہیرا تھا، ڈائمنڈ تھا. اب اس نے اس کو نکالا تو چمکتا ہوا ڈائمنڈ. اس نے کہا میں تو جیولر کے پاس لے کے جاؤں گا. جیولر کے پاس لے کے گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے تو مچھلی کے پیٹ سے ملا. اس نے اس کو تولا، وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ تھا کہ جب اس نے اس کی پیمنٹ کی تو اس بندے کے ساری زندگی کے خرچے سے وہ قیمت زیادہ تھی. ایک ہی مرتبہ اللہ نے پوری زندگی خرچہ دے دیا. اس کو کہتے ہیں برکت. ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا ہی نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے. ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی 1000 پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے 2000 پاؤنڈ دے دے، 3000 دے دے. یہ تو کبھی نہ مانگا. اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے، اسی میں برکت مل جائے، یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں. ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اللہ سے برکت مانگیے. تو وہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے، وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، دعا سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. دلیل حدیث پاک سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ. تم قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں؟ हफ्तों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, आम बंदों तो क्या बात करनी, नमाजी बंदे तिलावत नहीं होती। तो जब घर में नमाज की कुरान की तिलावत ही नहीं होती तो बरकत कहां से आएगी भाई। तो इसकी रोजाना घर में तिलावत, भले सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह अर्रहमान पढ़ लें, आखिरी 10 सूरतें पढ़ लें, मगर बस आज एक कमिटमेंट कर लें दिल में, हमारे घर में डेली कुरान मजीद की तिलावत लाजमी है। जिस तरह घर में खाना रोज पकता है ना, इसी तरह ये रूहानी खाना भी रोज पकना चाहिए, रोज कुरान की तिलावत होनी चाहिए। तो कुरान मजीद की तिलावत से बरकत है, बीवी भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े, मियां भी पढ़े, देखो बरकतें कैसे आती हैं। और आखिरी चीज कि फरमाया कि हज और उमरा करने से जिंदगी में बरकत आती है। अल्लाह ताला अपने घर के बारे में फरमाते हैं मुबारकन हुदल्लिल आलमीन। तो मुबारकन का क्या मतलब होता है? बरकत वाला घर है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अगर कोई रिज़्क की तंगी का कहता था ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे जाओ हज या उमरा करके आओ। और एक हदीस पाक में है बार बार हज या उमरा करना इंसान के रिज़्क की तंगी को खत्म करवा देता है। तो जाहिरा तो लगता है कि इसके ऊपर 1000 पाउंड लगेंगे, मगर इखलास के साथ अगर करे तो ये नहीं पता चलता कि भाई 10 के बदले अल्लाह ताला 10,000 वापस दे देंगे। तो इन आमाल से बरकत बढ़ती है, हम इन आमाल को अपनाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बरकतें अता फरमाएं। अब आखिरी बात कि कुछ आमाल से तो बरकत बढ़ती है और कुछ आमाल से बरकत घटती भी है, वो भी पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो अमल करते फिरें जो बरकत खत्म कर देते हैं। तो बरकत घटती किससे है? नंबर एक, बदनीयती से घटती है। जो बदनीयत इंसान होगा ना, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं होगी, बरकत नहीं होगी उसकी जिंदगी में। कई होते हैं ना नियत के खोटे, बुरा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, बीवी के बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग, माँ बाप के बारे में भी, दोस्तों के बारे में भी, दफ्तर में काम करते हैं वहां नेगेटिव थिंकिंग। जो नेगेटिव थिंकिंग वाला बंदा होगा ना, उसकी जिंदगी में कभी बरकत नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेर याद आ रहा है पंजाबी का, आप हजरात को टाइम है कि नहीं? ये आज आप हजरात को वो शेर सुनाते हैं, उसका तर्जमा भी साथ कर देगा। हमारे यहां एक बुजुर्ग गुजरे हैं सुल्तान उल आरिफीन बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनके पंजाबी का कलाम बहुत मारूफ है। फरमाते हैं ये नातियां धोतियां रब मिलदा ते मिलदा कुंभियां मछियां नू, अगर नहाने धोने से खुदा मिलता तो मछलियों को और कछुओं को खुदा मिल जाता, हर वक्त ही नहाते धोते रहते हैं। ये सिर मुनाया रब मिलदा ते मिलदा भेड़ा ससियां नू, अगर सर मुंडाने से रब मिलता तो एक भेड़ की किस्म है, सर पे बाल नहीं होते बाकी पूरे जिस्म पे होते हैं, तो उसका तो सर वैसे ही मुंडा हुआ होता है, उसको खुदा मिल जाता। ये जिक्र कीते हैं रब मिलदा ते मिलदा काल कड़ीछियां नू, एक परिंदा होता है काला सा, वो शाम को लटक जाता है कहीं और सारी रात आवाज निकालता रहता है, तो वो कहते हैं वो तो सारी रात जिक्र करता है, उसको खुदा मिल जाता। ये जतियां सतियां रब मिलदा ते मिलदा दांदा खसियां नू, पाक दामनी से खुदा मिलता तो जो खस्सी बैल होता है वो तो मादा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, उसको भी खुदा मिल जाता। तो ये बातें करके फरमाते हैं ये नातियां धोतियां रब मिलदा ते मिलदा कुंभियां मछियां नू, ये सिर मुनाया रब मिलदा ते मिलदा भेड़ा ससियां नू, जिक्र कीतियां रब मिलदा ते मिलदा काल कड़िछियां नू, और जतियां सतियां रब मिलदा ते मिलदा दांदा खसियां नू, और आखिर पर फरमाते हैं रब मिलदा ते मिलदा नीता अच्छियां नू, अल्लाह अगर मिलता है तो अल्लाह अच्छी नीयत वालों को मिला करता है। तो भाई नीयत अच्छी होगी तो जिंदगी में बरकत होगी, और नीयत बुरी होगी तो जिंदगी में बेबरकती होगी। कितने लोग हैं शरीक शिरकत का काम करते हैं और अपने शरीक का पैसा हथियाने की नीयत की हुई होती है, दाव लगा रहे होते हैं। कितने कारोबार वाले हैं कस्टमर को दाव लगाने की नीयत करते हैं, तो भाई नीयत ही अच्छी नहीं तो बरकत कहां से आएगी, तो बदनीयती से बरकत खत्म हो जाती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने एक वाक्य लिखा है, सुन लीजिए जरा, मौके के मुनासिबत से है। एक बादशाह था, उसने गर्मी के मौसम में सफर किया तो बहुत थका हुआ था और प्यासा था। उसको इतनी प्यास थी कि लगता था कि मेरी जान चली जाएगी। तो उसने एक अनार का बाग देखा, उतर पड़ा, बाग के मालिक से कहा कि भाई जाओ कोई दूध कोई अनार का जूस पिलाओ। वो बाग का मालिक गया और जाके एक गिलास बड़ा भर के लाया अनार के जूस का। उसने पिया, इतना टेस्टी इतना मजेदार कि बस मजा आ गया। अब जब उसने पिया तो उसने फिर मालिक को कहा कि भाई एक गिलास और ले आओ, मगर साथ ही दिल में ख्याल गया कि यार ये बाग तो मेरे पास होना चाहिए। अब वो दूसरा गिलास जब लेके आया तो इसने पिया तो जनाब इतना खट्टा के पिया ना जाए। तो बादशाह ने कहा भाई मुझे तो लगता है कि ये दरख्त बदल गया है, जिस वजह से ये जूस का जायका बदल गया। वो भी समझदार था, उसने कहा बादशाह सलामत दरख्त नहीं बदला, मुझे लगता है आपकी नीयत बदल गई है। पहले नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने टेस्टी बना दिया था, अब नीयत बद हो गई, अल्लाह ने उसको कड़वा बना दिया है। तो सबसे पहली चीज जिससे बरकत आती है वो नेक नीयती, और जिससे बेबरकती होती है वो बदनीयती। और दूसरी चीज मासीयत, गुनाह जो है ना ये बरकतों के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोलते हैं और हम गुनाह करके उन दरवाजों को अपने लिए बंद करवा देते हैं। जो गुनाह करते हैं वो उतनी मकदार बरकतों की बंद करवा देता है। अगर हम सोचें तो हम तो सुबह से शाम तक बरकतों के दरवाजे बंद करवाने में लगे हुए होते हैं, तो बरकतें कहां से आए। तो मासीयत से बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं, नेकी से बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम नेक बनोगे लाअकलू मिन फौकहिम व मिन तहत अरजुलहिम, हम इनको वो नेमतें खिलाते जो आसमान से उतरती हैं, इनकी रूहानी गिज़ा बनती, और वो नेमतें खिलाते जो पांव के नीचे जमीन से निकलती हैं, इनके लिए जिस्मानी गिज़ा बन जाती। तो मालूम हुआ कि गुनाह से फिर बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं। और तीसरी चीज बेपर्दगी बदनजरी, ये बेबरकती का सबसे बड़ा गुनाह है। यानी गुनाह तो बहुत सारे हैं मगर बदनजरी को और बेबरकती को बेपर्दगी को, लिहाजा जो बेपर्दा औरत होगी उसकी जिंदगी में बरकत नहीं होगी, होगी नहीं। रिस्क की या वो बेबरकती तो अलग, उसका खामिन ही उससे मुतमिन नहीं होगा। आप देख लें जितनी बेपर्दा औरतें होती हैं इनके खामिन इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्यों? उनको खुद तसल्ली नहीं होती, बरकत अल्लाह उनसे निकाल देते हैं। और बापर्दा औरतें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डालता है, उनके खानदानों को सुकून आ जाता है, वो नहीं इधर उधर जाते नहीं उधर उधर देखते। तो बदनजरी करने वाले बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बेपर्दगी करने वाले औरत से उसके मियां को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए पर्दा और नजर की हिफाजत बरकत हासिल करने के लिए यह जरूरी है। अगर हम इनको हासिल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बरकत अता फरमाएंगे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मेरे लिए इनमें बरकत रख दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला जिंदगी में भी बरकत अता फरमाए, मौत में भी बरकत अता फरमाए। फरमाया कि जो आदमी 10 मरतबा सुबह शाम पढ़ ले अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत बारिक लना फिल मौत, अल्लाह ताला उसको कलमे पे मौत अता फरमा देते हैं। तो भाई आज के बाद अपनी दुआओं में जहां और बहुत कुछ मांगते हैं अल्लाह से बरकत भी मांगें। हमारा मसला असल में बरकत ना होना है। जब बरकत आ जाएगी आप देखें सुकून भी होगा, औलाद भी ताबेदार होगी, बीवी भी फरमाबरदार होगी, घर के अंदर मोहब्बतें भी होंगी, उल्फतें भी होंगी, हमारे सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, हर चीज इन ऑर्डर आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें बरकतों भरी जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। www.tasqur'an.com